الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم بكتاب خطبات عارفی حضرت شیخ ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کے بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی رعتات پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے. اور یہ جو مجالس ہیں جس کو ابھی پڑھیں گے سنیں گے، یہ بھی ان لوگوں کے لیے تھی جو اس زمانے میں حضرت کے بعد اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے اس کے اندر تاثیر ہے. لیکن یہ تاثیر انہی دلوں میں اترتی ہے جو دل سے اس کے طالب ہوں. ہم دل کے اندر سچی طلب کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائیں گے. تو یہ ایک خط حضرت کا پڑھ رہے تھے جو کسی کی پریشانی کے سبب سے ان کو لکھا گیا تھا. اس میں کچھ مراقبات بتائے گئے تھے اپنے دل کی اصلاح کے لیے. انہی میں اب آگے بتا رہے ہیں کہ ان اعمال باطنی کے ساتھ ساتھ اس ضعیفی کی حالت میں جس قدر بھی توفیق ہو اور جس قدر بھی تحمل ہو تو کچھ نوافل اور کچھ ذکر لسانی کا اہتمام رکھنا بھی ضروری ہے. مسنونہ نمازیں، تہجد، اشراق، چاشت، عوامین اور صلاۃ التسبیح جس قدر آسانی سے تلاوت قرآن پاک ممکن ہو، ورنہ جس قدر قرآن آیات زبانی یاد ہوں، ان کا ورد رکھنا بڑی سعادت کی بات ہے. جو دل کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ وہ صلاحیت پیدا ہو، وہ قوت پیدا ہو، وہ ہمت پیدا ہو، جو ہمیں اپنے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانے کی ہمت دے دے. ہر وقت جو کشمکش چلتی ہے دل کے اندر، جو ہے یہ منفی جذبات ابھرتے ہیں. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اندر دونوں کی قوتیں رکھی ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا. تو یہ فجور کی قوت بھی ہے، یہ ابھرتی ہے، اس سے خالی کوئی انسان نہیں ہے. کتنا بڑا مقرر بن جائے، بزرگ بن جائے، اس کو کبھی یہ ہے کہ منفی خیال آئے نہ، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتہ نہیں بن سکتا، یہ آئیں گے. اب یہ ہے کہ جب ہمت نہیں ہے تو مغلوب ہو جاتا ہے، اب مغلوبیت میں پھر غلط کام کر بیٹھتا ہے، اور اگر اندر میں ہمت ہے تو مغلوب نہیں ہوگا. تو بس یہ قوت حاصل کرنی ہے کہ یہ تو ابھریں گے، اب ان پر غلبہ پانا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کے اللہ والے گزرے ہیں، ماشاءاللہ ان کے جو حالات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عشق کے اندر بڑے ہی مغلوب رہتے تھے. اغلب اوقات ان کا ایسے گزرتا تھا، لیکن شریعت کا اہتمام تھا، جماعت سے نماز پڑھتے تھے، سنتوں کا اتباع، कभी कभी जहन एकदम ऐसे फरमाते काले चोर को पकड़ो, किसी तरफ इशारा करके कभी काले चोर को पकड़ो। वो क्या था? यही जब कोई शैतानी वसवसा को आया ऐसा तो उसको डांट दिया काले चोर को पकड़ो। यानी कितना भी पाक साफ हो जाए उसको ना आए ये नहीं होगा। बात इतनी ये है कि जिसने मेहनत नहीं की और तज़किया नहीं हुआ और तज़किया नहीं हुआ वो छोटे थोड़े से ख्याल से क्या हो गया? मगलूब हो गया। और जिसके अंदर ये कुव्वत है मगलूब नहीं होता। और यही कश्मकश है, यही इम्तिहान है, इसी पर जो है ना तो इस ताकत को लेने के लिए जो है ना, जैसे कुछ मुराकबात बताए इन्होंने हजरत ने पहले पिछले जुम्मे को जो पढ़े गए हैं है? कुछ जितना तहम्मुल नवाफल भी पढ़े और कुछ जिक्र इंसानी भी है, जिक्र कल्बी भी इसी के लिए है। ये तो इसलिए फरमा रहे हैं कि चिश्ती हैं और चिश्तिया के अंदर जिक्र लसानी है। मैं भी अर्ज करता ना, एक तरीका ये भी है, जिक्र कल्बी भी है। ये जिक्र लसानी जिक्र कल्बी सारे इसीलिए हैं कि दिल के अंदर हिम्मत रहे, कुव्वत रहे है। तो एहतमाम जरूरी है। अब इस एहतमाम के अंदर मसनूना नमाजें, अल्लाह करे शौक लग जाए तहज्जुद का भी ये फरमा रहे हैं। तहज्जुद भी है, इशराक भी है, चाश्त भी है, अवाबीन भी है, सलातो तस्बीह भी है। आज कहते हैं जी फर्ज ही पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। क्यों जी है? फराइज ही पूरे हो जाए तो बड़ी बात है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है फराइज भी पूरे हो जाए लेकिन नवाफल का जखीरा भी रखना चाहिए जी। लेकिन फराइज की अदायगी के बाद दूसरी इंतहा यह है कि बात फराइज के एहतमाम नहीं नवाफल में लगे हुए, फराइज के एहतमाम के बाद नवाफल के अंदर। तो ये फरमाते हैं कि इसका भी कुछ एहतमाम करना चाहिए। तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, तलातु तस्बीह है। शेख अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने मजलिस के अंदर, उनकी मजालिस भी हम इतवार को पढ़ते हैं, फरमाते बाद अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं कि उनके यहां नवाफल का वजूद ही नहीं। ये जुमला जरा अजीब सा लगेगा, कई बार मैंने इसकी यहां पर बताया है, नवाफल का वजूद ही नहीं। ये नहीं कि नफल नहीं पढ़ते, यानी नवाफल को भी जिंदगी के अंदर इतने एहतमाम से किया जैसे फराइज को किए। उनके नवाफ भी कजा नहीं होते थे, ऐसी आदत पुख्ता हो चुकी है, इहतमाम इतना है। ये नहीं है कि नवाफल में लग के फराइज कजा हो रहे हो, ना ना ना, फराइज भी है और नवाफल भी है। तो इसलिए अब ये जो है ना आदत डालने की बात है, हिम्मत करने की बात है। आदत पड़ जाए फिर इनको छोड़ना मुश्किल, लेकिन शुरू में हिम्मत करनी पड़ेगी। इससे कुव्वत आएगी अंदर में, वो रूहानी कुव्वत आएगी, वो रूहानियत आएगी। अल्लाह से मांगे कि रूहानियत भी समझ में आ जाए। कल एक नौजवान आए हुए थे, कहते स्पिरिचुअलिटी समझा दें। स्पिरिचुअलिटी पता नहीं किसी की कोई किताब का हवाला देने लग पड़े। मैंने कहा भाई ये काफरों की स्पिरिचुअलिटी और चीज है, हमारी और चीज है। रूहानियत को समझना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज है। वो तो पाकीजगी का नाम है, गंदगी गलादत का नाम ही नहीं है। आज पता नहीं किस किस चीजों का हमने अपने तौर पर रूहानियत करार दे दिए। रूहानियत तो वो शफाफत है, वो लताफत है, वो पाकीजगी है। मनफी जज्बात उसमें उभरते ही नहीं है, अगर उभरते हैं तो दब जाते हैं, दबाना आसान हो जाता है। उस इस्तेदाद को हासिल करने के लिए आमाल बता रहे हैं है? जैसे पहले मराकबा शुक्र आ गया, मराकबा इस्तगफार आ गया है, ये पहले आया ना सर। इसी तरीके से ये तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, वह बीन है, सलात तस्बीह है, इससे भी इस्तेदाद बनेगी, अंदर में कुव्वत आएगी, हिम्मत आएगी। इसके साथ जिस कदर आसानी से तलावत कुरान पाक मुमकिन हो, अल्लाह करे ये भी शौक लग जाए। कितना फरमा रहे आसानी से, इसका मतलब है कि आदत डालने के लिए शुरू में खास थोड़ा सा ही शुरू करो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से करते चले जाओ, वरना जिस कदर कुरानी आयात ज़बानी याद हो उनका विर्द रखना बड़ी सआदत की बात है। मुझे याद आ गया इब्तिदा के अंदर नया नया दीन की तरफ आया, नए नए भी शुरू हजरत जी रहमतुल्लाह से बैत हो गए, तो हजरत से मैंने अर्ज किया तो कुरान नहीं पढ़ा जाता, आदत नहीं थी। हजरत ये नहीं फरमाया कितने सफाए रोज के पढ़ा करो है, यही पूछा जो हजरत फरमा रहे हैं यहाँ पर, ये डॉक्टर भैया आरती रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं। मेरे हजरत जी रहमतुल्लाह मुझे फरमाया तो जो सूरते ज़बानी याद है वो पढ़ लिया करो, इब्तिदा में आदत डालने के लिए जो सूरते ज़बानी याद है वही पढ़ लिया करो। यहाँ फरमा रहे हैं जिस कदर कुरानी आयात ज़बानी याद हो इनका विद रखना बड़ी सआदत की बात है, शुरू तो करो, शुरू तो करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक आदत डाल देंगे, फिर छुटेगी नहीं, फिर जी चाहेगा कि और से और से और जाए। इसीलिए आगाज के अंदर ये फरमा रहे हैं, इसके अलावा जिक्र लिसानी, तस्बीहात मसनूना, कसरत से इस्तग़फार, कसरत से विर्द, कलिमा तैयबा और दुरूद शरीफ, और जब कभी मौका मिले अपनी जरूरियात, अपनी एहतियात, अपनी एहतियाज और अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों के मुतल्लिक दिल ही दिल में अल्लाह ताला से बातें करने की आदत डाली जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये भी शौक लगा दे, अल्लाह से बातें करने का शौक मुश्किल है, जिसको लग जाए उसको तो बहाना चाहिए बातें करने का। जो हजूरी की कैफियत बनती है मुनाजात के अंदर, बातें करने के अंदर, ठीक है जिक्र लिसानी भी करें, जिक्र कल्बी भी करें, तस्बीहात मसनूना भी करें, इस्तग़फार कसर से करें, कलमा तैयबा कसर से पढ़ें, दुरूद शरीफ कसर से पढ़ें, ये अपनी जगह पर आ गया। लेकिन फरमाते हैं जब कभी मौका मिले अपनी जरूरियात, अपनी एहतियाज, अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह ताला से क्या करें, बातें करने की आदत डाली जाए, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें भी शौक लगा दे। असल चीज तो शौक है, जब शौक लग जाता है फिर मजा आता है, फिर आदमी को इसके लिए वक्त निकालना आसान हो जाता है। तो अल्लाह हमें भी इसकी लज्जत से आसनाई अता फरमा दे कि अल्लाह से बातें करें, और अपने वालदैन, आबाओ अजदाद, अपने दोस्त अहबाब जिनका इंतकाल हो चुका है उनके लिए दुआए मगफरत और ईसाले सवाब का एहतमाम भी इल्तजाम रखा जाए। तो चलो ऐसे ही नहीं, इसका बाकायदा एहतमाम किया जाए, दुआए मगफरत का, ईसाले सवाब का। आज ईसाले सवाब को बड़ा मुश्किल बना दिया गया है, हालांकि है बड़ा आसान है, लेना और फिर देना दो ही चीजें, पहले सवाब लेना फिर देना। लेना इखलास के साथ है, लेना सुन्नत के इत्तबा के अंदर। तो नफली इबादत जितनी है खा वो माली हो या बदनी हो, वो जिंदा मुर्दा जिसको चाहो इसाल कर दो, आसान, कोई मुश्किल नहीं है। अमल करने से पहले नियत कर लो, अमल के दौरान कर लो, अमल के बाद कर लो, ये मुस्तकिल हम इसकी आदत डालें, हम इसकी जो है ना इल्तजामन जो है ना अपने वालदैन, अबाओ अजदाद, अपने अकारब, इनके लिए जो है ये भी अदाए हक मोहब्बत के लिए हम पर वाजिब है। अगर फरमा रहे हैं ये भी अदाए हक मोहब्बत, मोहब्बत का हक है हम पर वाजिब है, और ये अमवात इंतजार में रहती हैं जी कि हदिया आए। अब हदिया ये नहीं है कि पैसे दिए जाएं, हैं, कपड़े दिए जाएं, गिफ्ट यहां जैसे यहां पर खाने पीने के, नहीं नहीं, अब उनकी हदिया यही है जो नफली इबादत हो इखलास के साथ हो सुन्नत के मुताबिक, बस इतनी सी बात था, जहां आपने नियत की उस तक पहुंच गए। एक वाक्य देखा है, बहुत सारे आसार में बहुत सी बातें मिलती हैं कि देखा कब्रिस्तान के अंदर जय जितने मुर्दे हैं कुछ चुग रहे हैं, जैसे परिंदा चुगता है ना, कुछ चुग रहे हैं, तो एक बैठा हुआ है बिल्कुल गमगीन सा अफसरदा सा बैठा हुआ है, उससे पूछा ये कौन, और आप क्या कहते इनको हदिये आ रहे हैं वो चुग रहे हैं, तेरे पास कहते मेरा एक बेटा है मेरा पास वो मशगूल है अपने, उसने कभी मुझे इशारा नहीं किया, उन्हें पूछा कहाँ रहता है वो बताया ऐसे, तो ये गए उनके पास और ये मंजर बयान किया कि मैंने ये देखा है और तुम्हारे बाप को भी देखा है, कि बेचारा अल्लाह का शुक्र है उसको एहसास दिलाया और एहसास हो गया, उसने शुरू कर दिया, फिर दूसरे मोड़ पर गुजर हुआ तो उसको भी खुश खुरू देखा, उसने इसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरे बेटे को है मुतवज्जे कर दिया। देखो हालांकि बरज़ख है, बरज़ख से भी राब्ते हो जाते हैं, लेकिन ये एक नादरन है, कभी कभार, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें भी हैं। तो ये फरमाते हैं कि इनके लिए दुआए मकफत इसाले सवाब का एहतमाम भी इल्तजामन रखा जाए, ये भी अदाए हक मोहब्बत के लिए हम पर वाजिब है, और यही वक्त मोहलत जो हमको नसीब है ये हक मोहब्बत अदा करके हमको सआदत उखरवी हासिल करना है। अल्लाह अकबर, हमने अपने वालिदैन अपने अकारब के लिए कुछ पढ़ के कुछ माली सदका करके उनको ईसाल किया, उनकी मोहब्बत का हक अदा किया, उनको पहुंचाया है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे लिए भी सआदत है उखरवी है, दोहरा सआदत, उनको भी दे दिया हमें भी, इसलिए इसका इहतमाम करना चाहिए। ज़ईफ़ी और इन्हतात उम्र का जमाना खुद एक ऐसी हालत है कि एक मोमन सरापा मूरद रहमत इलाही बन जाता है। अब बताओ, अब बूढ़ा कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ खाया नहीं जाता, दांत नहीं है, कुछ लज्जत नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मजा नहीं है, ये रोने रोता है ना। ज़ईफ़ी इन्हतात एक 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 कुदरती चीज है, तबई चीज है, एक जमाना जवानी के है, आजाद जवारे सारे एहसासात बेदार हैं, हर चीज में एक मजा है, खाने में मजा है, है हर चीज की एक लज्जत है, है, लेकिन जब ज़ईफ़ी आ गई इन्हतात ये एक ऐसी हालत है ज़ाहरी तौर पर, तो ये बंदा महसूस कर रहा है मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन फरमाते हैं ये एक ऐसी हालत है कि एक मोमिन, हाँ शर्त यह है कि ईमान वाला हो, मूरद रहमत इलाही बन जाता है, अल्लाह की रहमतें वारिद होती है इसके ऊपर, इस ज़ोफ़ के जमाने के अंदर, इस बुढ़ापे के अंदर, हाँ शर्त यही है कि इसको मुसीबत ना समझे, अल्लाह से शिकायतें ना करे, इसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करे। मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग थे, मशहूर तो उनका नाम तो याद ही नहीं किया रह गया, तबलीगी बुजुर्ग थे, खयात का शेख खयात कहते थे रहमतुल्लाह अलैह, जो शुरू में तबलीग का काम शुरू हुआ उसके शुरू अवायल में से थे वो, खैर वो तफसील है, हमने बुजुर्गों से सुना, उसके तल्लक से मौलाना उबैदुल्लाह बलियादी रहमतुल्लाह ने बताया कि सबसे पहला ये बंदा खड़ा हुआ जिसने तबलीग के काम के लिए अपने आप को वहाँ पेश किया दीन के काम के लिए, और हमने उनकी अल्लाह का मौका दिया उनकी ज्यारत का, उसका ज़ईफ़ हो चुके थे, क्योंकि ये जब जमात इनकी गई है ये तकसीम से पहले, मुल्क तकसीम होने से पहले, तो कितना ज़माना पहले जाए ना, हमने जो जमाना पाया उनके जोफ बढ़ापे का, और माशाल्लाह ऐसी अल्लाह ने उनके अंदर सलाहियत दी थी कि मौला इलियास रहमतुल्लाह की बातें जबानी याद गिनती के साथ, मौला यूसुफ रहमतुल्लाह की बातें जबानी याद, उनके इरशादात ऐसे याद, और फिर मस्जिद नबवी की और मदीना में की ज्यारतें अल्लाह अकबर ऐसे अंदाज से बयान करते थे मजाक आ जाता था। एक जिंदगी का हिस्सा गुजारा उन्होंने वहां पर। जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, जब हम जाते मस्जिद नबी में खास जगह पर हमें मिल जाते, उनकी इरशादात हम भी सुनते, सोहबत से भी फायदा होता। एक दफा गए तो नजर नहीं आए, एक दिन दो दिन, तो किसी से पूछा कि शेख खयाब नजर नहीं आ रहे, कहते हैं वो उनकी बिनाई भी जाती रही है, जोख भी ज्यादा है, तो मस्जिद नबी आ नहीं पा रहे। तो मैंने कहा चलो उनकी इयादत करते हैं, तो उनके यहां चले गए एक कमरे में माशाल्लाह। एक बात तो यह कि नाबीना जुम्मे का दिन था, जुम्मे से पहले सुबह के वक्त हम गए ना, तो वो अकेले ही रह रहे थे वहां पर, और ये अपने जो है ना वो कैंची से बना रहे बिनाई के साथ नहीं। खैर मुख्तसर बात यह है कि उनसे बात करते करते जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं कितने महीने से मस्जिद नबवी नहीं जा पा रहा, उधर की जो, और मैंने पता नहीं 60 साल कितना बताया कि अल्लाह का शुक्र है मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ी हैं और ज्यारतें खूब कराई हैं, वो हर एक के साथ चल पड़ते थे ज्यारतें कराने, जो भी कहता था माशाल्लाह, ओ वाह बड़े अच्छे तरीके से। अब मैं है बेबस हो गया हूँ, मस्जिद नबी भी जाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं अर्ज किया, मैंने आप जैसे बड़ों से हमने सुना है कि जिस अमल को हालत सेहत के अंदर मुश्किल मिजाजी से करता रहे, फिर अगर बीमारी से बुढ़ापे से तआत्तुल आ जाए, अल्लाह उसको अजर देते हैं। मैंने तो बड़े अदब से अर्ज किया कि आप जैसे बड़ों से हमने है भी ऐसा ही है। तो उन्होंने फौरन फरमाया बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि जिसने जवानी को अल्लाह की नेमत समझा, सेहत को अल्लाह की नेमत समझा, और जवानी वाले अहकाम पर अमल किया, और सेहत वाले अहकाम पर अमल किया, जवानी उसके लिए अल्लाह की नेमत बन जाती है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत बन जाती है। लेकिन अगर जवानी के अंदर अल्लाह की नेमतों की कदर ना की, उसकी अताअत के बजाय नाफरमानी में गुजार दी है, और जवानी वाले अहकाम पर अमल ना किया, सेहत वाले अहकाम पर अमल ना किया, तो ये जवानी इसके लिए क्या बन जाती है, जहमत बन जाती है, वबाल बन जाएगी इसके लिए। इसी तरीके से है बुढ़ापा अल्लाह की नेमत है, अगर इस बुढ़ापे को अल्लाह की नेमत समझा, इसमें इस बुढ़ापे वाले अहकाम पर अमल किया और गिला शिकवा नहीं किया, फिर तो बुढ़ापा नेमत है, वरना बवाल बन जाएगा। इस तरह उन्हें सेहत का बीमारी का मुख्तलिफ बातें करके इस तरह कि असल चीज ये है। बड़े मजे में थे, बड़े मजे में ना, कि खुद काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन सिर्फ एक वो हिम्मत नहीं आने जाने की। तो यहां इसी को फरमा रहे हैं है? कि ज़ैफी और इनहतात उम्र का जमाना खुद एक ऐसी हालत है कि मोमिन सरापा मूरद रहमत इलाही बन जाता है, मोमिन ईमान वाले के लिए। अपने हजरत का तस्करा मैं बहुत दफा किया, इसी बढ़ाते में इसी मजदूर में इतने मजे में होते थे, इतने मजे में होते थे है? और ना कहते हैं लो जी उन अब तो दांत ही नहीं रहे हमारे, अब तो मजा ही नहीं है, है? अब तो बस मरना ही बाकी है, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन ये अल्लाह वाले है जैसे हमारे कि अब वो इस पर भी खुश होते हैं कि अल्लाह की खास रहमतों का नजूल हो रहा है मोमिन के लिए। ऐसी हालत में कि जब कुछ ना बन पड़े, ऐसी हालत में जबकि कुछ ना बन पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में आजाद जवाब दे गए, कुछ बन नहीं पा रहा, सिर्फ माची से बचता रहे, इसका खामोश रहना, मामूली जरूरत के चलते फिरते रहना, यहां तक के सोते रहना भी इबादत में शुमार होता है। गुनाहों से बच जाए, गुनाहों से, मासी से बच जाए। ऐसी हालत में कि जब कुछ ना बन पड़े, सिर्फ मासी से बचता रहे, बस ये है, तो इसका खामोश रहना, मामूली जरूरियात के लिए चलना फिरना, यहां तक के सोते रहना भी इबादत है, शुमार होता है। ये लम्हात बहुत ही मुख्तनम है, गनीमत है अल्लाह, और हर लम्हा अफजाइश सरमाया आखरत है, आखरत की तरक्की हो रही है हर लम्हा। गो कमा हक्को पूरा ना हो, फिर भी काबिल हजार शुक्र है। अब इसके जोफ की वजह से, इसकी बेबसी की वजह से वो हिम्मत नहीं कर रहा, उतने अमाल पहले नहीं कर पा रहा, थोड़े कर रहा है, लेकिन मासी से बच रहा है, बहुत बड़ी नेमत है, काबले हजार शुक्र है। अगर इस वक्त की नाकदरी की गई, जिसको अल्लाह ताला अपने फजल करम से बतौर मोहलत हमको अता फरमाया, हकीकतन ये बड़ा किफरान नेमत है, खुसरान अजीम है। क्यों? कि समझने की बात है, जब अल्लाह ताला हकीम अलल इतलाक है, हकीम से मुराद क्या है, हिकमत वाले अलल इतलाक, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, है? और हमारे रहीम है और करीम है और मरबी है। फिर ये हमारी हालत शिकस्ता और तकालीफ जिस्मानी और दिमागी अफकार परेशानी जिसमें मुबतला होते रहते हैं, मशीयत इलाहिया का ये फेल अबस तो नहीं है, फजूल नहीं है, बेकार नहीं है, बल्कि यकीनन और हकीकतन ये लम्हात जिंदगी अमूर मुतज़क्करा बाला ही के वास्ते हमको अता किए गए, ताकि हमारा मसूद हयात और रूह की सलाहियत की तकमील बदरजा अतम हो जाए। जब हिम्मत है अमल किया, अब हिम्मत नहीं है कम हो गया है, है? लेकिन गिला शिकवा नहीं है, है? मासी से बच रहा है, है? तो ये गनीमत समझना चाहिए, ये एक खास सरमाया मिल रहा है इस वक्त, ताकि हमारा मकसूद हयात रूह की सलाहियों की तकमील बदरजा अतम हो जाए, ताकि वो हयात के अबदी व सरमदी के लिए सरमाया खास बन जाए। इस हकीकत को जान लेने और अच्छी तरह समझ लेने के बाद हर लम्हा हयात को गनीमत तो अहम समझना चाहिए। जवानी की जमाने में जवानी की नेमतों को इस्तेमाल करना, बुढ़ापे के अंदर इन कवा के कमजोर हो जाने पर जो बन पा रहा वो करना, इसलिए हमारा असल सरमाया है। हर लम्हा हयात को गनीमत अहम समझना चाहिए और सबर व शुक्र के तकाजों को पूरा करते रहना चाहिए। दो ही हालतें हैं जी, एक हमारी मर्जी के मुआफक है तो शुक्र अदा करें, एक मर्जी खिलाफ है तो क्या करें, सब्र करें। दो ही बातें हैं। ईमान वाला अजीब है, कभी ये है शुक्र से ले रहा है, कभी ये सब्र से ले रहा है। मर्जी के मुताबिक है शुक्र है, मर्जी खिलाफ है तो सब्र है। सबर शुक्र तकाज़ों को पूरा करते रहना चाहिए। क्यों? कि अल्लाह ताला ने खुद अपने रहम व करम से इस उम्र की अहमियत के वक्त मुतवज्जे फरमाया है कि आखिर वक्त ये नज़ा की हालत में होश आने के बाद बंदा यूं कहता है, अफसोस की बात जब से है ना, जब नजा की हालत आ रही होती है और होश आता कहता है काश है? तो पहले कुछ करता रहे। इस वक्त ये तमन्ना बंदे की ला हासिल है, कहते अगर मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं अब करूं, मिलेगी मोहलत फिर, मगर हमको ये मोहलत दी गई जो काबिल हजार शुक्र है। जब तक ये सांस मौजूद है, रूह मौजूद है, काबिल हजार शुक्र है, इसको इनाम इलाही समझें, इसका शुक्र कसे अदा करते रहें। अल्लाह हम सबको इसकी भी तौफीक अता फरमाए। तो ये किसी ने परेशानियों के इजहार करके गिले शिकवे किए थे बहुत ज्यादा ज्यादा, उसको तस्कीन के लिए खत एक लिखा था जिसका ये अभी इख्तिताम हो गया है कि कोई इंसान इससे खाली नहीं है। दुनिया के अंदर उस पर कोई तकलीफ ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना आए, ये हो नहीं सकता। इस दुनिया के अंदर ये चीजें चलती रहेंगी, बस अल्लाह से ये मांगना है कि अल्लाह जो हाल हमारे ऊपर लाए है खा वो खुशगवार हो नागवार हो, अल्लाह हमें उस मौके के मुताबिक जो अल्लाह हमसे चाहते हैं उसको करने की तौफीक अता फरमाए। बुढ़ापे में बीमारी के अंदर आमाल के अंदर तकलीफ हो गई है उसको इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो कौन करेगा हा? जिसके दिल के अंदर चटक होगी, जिसके दिल के अंदर शौक होगा है? तो अल्लाह से मांगे अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि दिल की सलाहियत ऐसी बन जाए कि आराम हर घड़ी हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे है? और उसकी रहमतों को उसकी अनायतों को वसूल करता रहे और अपने आप को उस वक्त के अहकाम पर डालता रहे है? और अपने आप को जो है मशहूर रखे अपने दिल को, लेकिन दिल को मशहूर रखने की आदत मुस्तकिल डालने की जरूरत है। इसी के लिए जिक्र की मशक है, जिसका एक तरीका ये भी है जिसकी मशक मारे की जाती है वो जिक्र कल्बी है जिक्र खफी है, दिल में चुपके चुपके अल्लाह को याद करना। इसका मुश्किल हुक्म भी है वस्को रब्बा का फी नफ्से का तदर्रुअन व खीफतन व दून और जहरे मिन अल कौल बिल हुदुबे वल आसाली वला तुकुम मिन अल गाफिलीन, फरमाया जा रहा है जिसका मफहूम है अपने रब को अपने जी में याद करने अपने दिल में आजिजी के साथ और पुकारे बगैर चुपके चुपके, और सुबह भी याद करो शाम भी याद करो यानी गाफिलीन में से ना हो यानी कसरत से याद करो। तो कुरान एक इलाज ये भी बता रहा है कि अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए है दिल के अंदर है हम चुपके चुपके करे खफी के जरिए से अपने दिल को अल्लाह के मुतवज्जे रहने की आदत डाल लें। अल्लाह फरमाते फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। हमारा याद करना अल्लाह के नाम के साथ है, दूसरे का फरमा रहे हैं वज़कुर इस्मा रब्बी का व तबत्तल इलैही तब्तीला, रब को उसके इसम से याद करो उसके नाम से याद करो है? और तबत्तुल के साथ, तो दिल की सलाहियत जो कि हमें अपने नफ्स पर गलबा पाने की हिम्मत और कुव्वत दे, जो हमारे माहौल की इन गंदी फजाओं के अंदर जो मकलूब होने से बचाए, जो शैतान के मकर और जालों से बचने की हिम्मत दे, इसके लिए हमें कुछ तन्हाई में वक्त निकाल कर अपने दिल में अल्लाह के मुबारक नाम फतबारक कस्मु रब्बी का फरमा रहे, रब का इसमें बड़ा मुतबर्रक है, इस मुबारक नाम को दिल में रचाने बसाने की मशक करनी है। तो जिक्र कल्बी क्या यही है कि दिल के अंदर जो है एक तसव्वुर की मशक है कि तसव्वुर के साथ अल्लाह का मुबारक नाम लफ्ज अल्लाह इसको लिख लें, लिखा हुआ तसव्वुर कर लें और इस मुबारक नाम की दिल में तकरार करें मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह 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 अल्लाह, ये तकरार इतनी करनी कि जिसका नाम ले रहे हैं जिसको याद कर रहे हैं जिसको पुकार रहे हैं उसका ध्यान ख्याल हमारे दिलो दिमाग रग रग रेशे में ऐसा समा जाए कि हमें तन्हाइयों के अंदर भी ऐसा याद रहे, उसकी हर अतात पर डाल दे हर नाफरमानी से रोक दे। तो अल्लाह से मांगे जिससे मकसूद है दिल में वो शफाफत वो लताफत वो पाकीजगी वो कुव्वत वो हिम्मत अल्लाह हमें अता फरमा दे। अब थोड़ी देर के लिए इस मुबारक नाम की दिल के अंदर हम जो है तकरार करके इसको रचाने बसाने की मशक कर लें। الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام منك السلام عليك أرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب العالمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم إنك رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. يا الله ہمارے دلوں کو پاک فرما دے صاف فرما دے شفاف فرما دے. یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ جتنے اعمال ہمارے حضرت نے اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائے تاکہ یا اللہ ہمارا ذکر ہمارا دل بھی پاک ہو ہمارے اندر بھی صلاحیت ہو ہمارے اندر بھی یا اللہ آپ کی محبت ہو. یا اللہ وہ سارے اعمال کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سارے اعمال کی حقیقت ہم کو نصیب فرما دے ان اعمال کی نورانیت ہم کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم کو اتباع سنت نصیب فرما دے. یا اللہ اتباع سنت کا نور نصیب فرما دے. یا اللہ گناہوں سے ہم کو طبعی نفرت اور کراہت نصیب فرما دے. یا اللہ وہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما وہ ایمان کی بصیرت نصیب فرما وہ ایمان کی روشنی نصیب فرما جس میں یا اللہ ہم کو آپ کی نافرمانی کی حقیقت نظر آئے اس کی غلاظت اور گندگی نظر آئے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين.